संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में भी वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में।
प्रत्येक आत्मा स्वभाव से भगवान है और वो यदि चाहे तो प्रकट रूप से पर्याय में भी भगवान बन सकता है, ये चर्चा चल रही है। और वो भगवान बनने का उपाय भी उसे कहीं बाहर से नहीं खोजना है, उसमें किसी दूसरे के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्वयं के दर्शन, स्वयं के ज्ञान और स्वयं के ध्यान से ही ये काम होता है, जिन्हें शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कहते हैं। वैसे तो इस आत्मा में अनंत गुण हैं, लेकिन तीन गुण ऐसे हैं जिनके कारण यह आत्मा, जिनमें जिनकी विकृति के कारण यह आत्मा अनादि काल से संसार में भटक रहा है, वो अनंत दुखी है। और यदि वे तीन गुण सही दिशा में परिणमित हो जाएं, परिवर्तित हो जाएं, तो यह आत्मा अनंत दुखों को मेंट कर अनंत सुखी बन सकता है, स्वयं भगवान भी बन सकता है। और उन गुणों के नाम हैं ज्ञान, दर्शन और चारित्र। ज्ञान का काम है जानना, जो वस्तु जैसी है उसे वैसी जान लेना, ये ज्ञान का कार्य है। ये वस्तु मेरी है या तेरी है, ये निर्णय ज्ञान नहीं करता। ज्ञान को इससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी पर पदार्थों में अपने और परायेपन का भेद करना, ये श्रद्धा गुण का कार्य है। और ये चीज अच्छी है या बुरी है, ये भी ज्ञान का काम नहीं है। ये काम चारित्र गुण का है। और प्रत्येक जीव अपने राग के अनुसार इन चीजों में ये अच्छी है और या बुरी है ऐसा मानता है, क्योंकि वस्तु स्थिति तो ऐसी है कि कोई भी पर पदार्थ आत्मा का नहीं है। नास्ति सर्व संबंधो परिद्रव्यात्म तत्त्वयो, परिद्रव्य और आत्मा में कोई भी संबंध कोई किसी का है ही नहीं। वस्तु स्थिति तो ऐसी है, लेकिन श्रद्धा गुण का एक काम है कि वो किसी न किसी पदार्थ को अपना माने ही माने, उसके बिना वो रह नहीं सकता है। इसलिए जब उसे स्वयं अपने आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं, आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, तो किसी न किसी पर पदार्थ में अपनापन स्थापित कर लेता है। इसलिए ये स्वा है, ये पर है, ऐसा विभाग का मुख्य कारण श्रद्धा है। और अच्छी बुरी का निर्णय क्या है? कोई चीज अच्छी बुरी नहीं है, चीज तो चीज होती है, उसमें अच्छे बुरे का सवाल क्या है? मैं आपसे पूछता हूं कि रंग काला अच्छा होता है या गोरा? सोच के जवाब देना, जल्दी नहीं कि साहब इसमें सारी दुनिया जानती है कि गोरा रंग अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका जैसे देशों में लाखों गोरे लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि घंटों समुद्र के किनारे नंगे बदन पड़े रहते हैं सूर्य की तेज धूप में, क्योंकि वो चाहते हैं कि थोड़ा हमारा रंग का गोरापन कम हो जाए, क्योंकि उन्हें इतना गोरापन अच्छा नहीं लगता। हो सकता है काले लोगों को गोरा रंग अच्छा लगता हो, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, काला रंग बुरा है और गोरा रंग अच्छा है? तो हमारे तीर्थंकर नेमिनाथ भी तो सांवले थे, श्री कृष्ण भगवान भी तो सांवले थे, वो अच्छे थे कि नहीं थे? और उनकी बात जाने दीजिए, हम अपनी बात करें ना। हमें अपना चेहरा गोरा अच्छा लगता है और बाल काले। यदि काला रंग बुरा होता तो हम काले बालों को पसंद क्यों करते? क्यों? यदि ऐसा हो जाए कि हमारा चेहरा बालों जैसा हो जाए और बाल चेहरे जैसे हो जाए तो क्या होगा? बस हमने ये कल्पना कर ली है कि बाल काले अच्छे होते हैं और चेहरा गोरा, और हमारी इस कल्पना और मान्यता के कारण, हमारे इस राग के कारण हमने ऐसा मान लिया है। लेकिन वास्तव में न कोई रंग अच्छा है न कोई रंग बुरा है, रंग तो रंग होता है, चाहे वो गोरा हो और चाहे वो काला। कौए का जो चमड़ी का बाहरी हिस्सा है और बाल हैं वो काले होते हैं, खून लाल होता है, हड्डी सफेद होती है, क्यों? तो कौए को काला कहना क्या सच है? एक ऊपर से देखा हुआ सच है। कौआ तो उस पूरी समग्र वस्तु का नाम है ना। तो ये जो पदार्थ में अच्छे बुरे का निर्णय जो हम करते हैं, वो निर्णय हमारा राग देश से प्रभावित होता है, वो वास्तविक नहीं होता है। वस्तु तो जैसी होती है वैसी होती है। अग्नि कैसी है, क्या गर्म, क्या अच्छी, क्या बुरी? अग्नि को अच्छी बुरी का क्या सवाल है? बस गर्म है। अब वो किसी को अच्छी लगती है गर्म और किसी को बुरी लगती है, तो हम क्या करें? ये तो उसके राग द्वेष का काम है। और एक ही व्यक्ति को गर्मियों में बुरी लगती है और सर्दियों में अच्छी लगती है, क्यों? तो ये तो उसकी मनस्थिति की बात हुई। अग्नि तो अग्नि है और उसका स्वभाव है गर्म होना। तो दुनिया में कोई भी चीज ना अच्छी है ना बुरी है, ना अपनी है ना पराई है, वो तो जो है सो है, जिसकी है इसकी है। प्रत्येक द्रव्य अपना स्वयं है और वो जैसा है वैसा है, जैसा है वैसे का नाम ही समझ लो अच्छा है। लेकिन इस जगत में न सच्चे की कीमत है, न अच्छे की कीमत है, अपने की कीमत है। क्या मतलब? इस बात को मैं आपको एक उदाहरण से स्पष्ट करूंगा तो बात समझ में सरलता से आएगी। एक सेठ था और उसका एक इकलौता बेटा। कैसा? जैसे कि करोड़पतियों के होते हैं, सातों व्यसनों में पारंगत। सेठ सुबह से उठकर अपने उस बेटे को हजार गालियां देता था और कहता था कि अबे नालायक, तू मेरे घर में पैदा हो गया है इसलिए गुलसले उठा रहा है। किसी गरीब के घर में पैदा हुआ होता, अरे अभागे, तो भूखों मर जाता। तब वो लड़का कहता है, पापा और चाहे जो कुछ कहो, लेकिन मुझे अभागा नहीं कह सकते हो। तो क्यों? क्योंकि अभागे तो आप हैं जिसे मेरे जैसा नालायक बेटा मिला है। मैं तो महाभाग्यवान हूं जिसे आप जैसा कमाऊ बाप मिला है। क्यों? वो अपने बेटे से कहता है, मालूम, एक पड़ोस में एक पड़ोसी का लड़का रहता है। वो सुबह 5 बजे उठता है, 5 किलोमीटर घूमने जाता है, फिर आता है, नहाता है, धोता है, नाश्ता करता है, मंदिर जाता है, स्कूल समय पे जाता है, पढ़ता है, लिखता है, और नालायक तो सुबह 9 बजे तक सोता रहता है। अपने बेटे की इतनी निंदा करता और पड़ोसी गरीब आदमी के बेटे की भगवान जैसी रोजाना प्रशंसा करता, जिसे सुनकर पड़ोसियों को एक भ्रम होने लग गया था कि सेठ जी पड़ोसी के बच्चे को बहुत प्यार करते हैं और अपने बेटे से बहुत नाराज हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी सारी संपत्ति पड़ोसी के बेटे के नाम लिख दें और अपने बेटे को एक नया पैसा ना दें अपनी वसीयत में। लोगों को ऐसा भ्रम होने लग गया था उनके व्यवहार से। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि पड़ोसी का बेटा स्कूल नहीं गया, तो सेठ जी ने पूछा, बेटा स्कूल क्यों नहीं गए, कि क्या करें? मास्टर जी कहते हैं कि ड्रेस में आओ स्कूल, ये कपड़े नहीं चलेंगे, और किताबें लेके आओ। मैं पापा से रोजाना कहता हूं किताबें लाने के लिए और ड्रेस बनवाने के लिए, तो वो कह देते हैं कल बनवा दूंगा, कल ला दूंगा। लेकिन उनका ये काल आज तक तो पूरा हुआ नहीं, एक महीना हो गया। अब वहां जाकर स्कूल में ब्रेंच पर खड़े हो जाना और रोजाना डांट खाना, इसके बजाय नहीं जाना अच्छा है, इसलिए आज मैं स्कूल नहीं गया। तो सेठ जी बड़े उदारता से बोले, अरे नहीं नहीं बेटा, कल जरूर जाना। अपना वो नालायक पप्पू है ना, वो हर महीने नई किताबें लाता है और फाड़ के फेंक देता है। बहुत से पुरानी फटी किताबें पड़ी हैं, उनमें से एक सेट तुम छांट ले जाओ। और हर नालायक हर महीने नए नए कपड़े सिलाता है और पुराने फाड़ के फेंक देता है। बहुत सी ड्रेसें पड़ी हैं, उनमें से एक तुम जो साबत सी हो छांट के ले जाओ, लेकिन स्कूल जरूर जाना। अब जरा आप सोचिए कि जिस पैसे बेटे की भगवान जैसी स्तुति करता था, उसके लिए एक नया कपड़ा का सेट सिलाने की इच्छा नहीं हुई, उसे एक जोड़ नई किताबें खरीद देने का भाव नहीं आया, अपने उस नालायक बेटे के फटे पुराने उतरन के कपड़े और फटी पुरानी किताबें देने का भाव आया, और अपने उस नालायक बेटे को सारी संपत्ति दे जाने का पक्का विचार है, कभी स्वप्न में भी विकल्प नहीं आया कि ऐसे नहीं देके किसी दूसरे को दे देना। अब मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा तो पड़ोसी का बेटा है, सच्चा तो पड़ोसी का बेटा है, उसके प्रति राग की क्या हालत है? और अपना बेटा ना सच्चा है ना अच्छा है, लेकिन उसके प्रति सर्वसमर्पण का भाव क्यों है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्योंकि वो अपना है। इस जगत में अपने की कीमत है, सच्चे और अच्छे की कीमत नहीं है। ये भगवान आत्मा भी जब तक हमें अपना नहीं लगेगा, तब तक इसकी कीमत होने वाली नहीं है। हमें जैसे स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव और शरीर अपना लगता है, वैसा अपना अपना आत्मा नहीं लगता है, इसलिए उसकी इतनी उपेक्षा हो रही है। तो अपने आत्मा में अपनेपन का नाम सम्यक दर्शन है, और पर पदार्थों में अपनेपन का नाम मिथ्या दर्शन है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि आत्मा के गीत मत गाओ, कोई लाभ नहीं होगा उससे। हम उसके कितनी ही महिमा बताएं कि वो इतना महान है, अच्छा है, सच्चा है, लेकिन जब तक ये पता नहीं पड़ेगा कि भाई मैं स्वयं हूं, तब तक उसके प्रति अपनापन नहीं आएगा। समझने समझाने की जरूरत तो इस बात की है कि मैं कौन हूं, आखिर वास्तव में मैं हूं कौन, मैं देह हूं या आत्मा? क्योंकि जिसमें हमारा अपनापन होता है, सर्वस्व समर्पण नियम से उसके प्रति ही होता है। आज तक हमने आत्मा की महिमा के गीत तो बहुत गाए, लेकिन ये हमारी समझ में नहीं आया कि ये भगवान आत्मा मैं स्वयं हूं। जिस दिन ये हमारी समझ में आ जाएगा, तो उसी का नाम है सम्यक ज्ञान। और जिस दिन ये पक्का विश्वास हमें हो जाएगा कि ये भगवान आत्मा ही मैं हूं वास्तव में, उसका नाम है सम्यक सिद्धान माने सम्यक दर्शन। इसलिए मैं अत्यंत सरल भाषा में ये बात कहा करता हूं, अपने में अपनापन इसका नाम है सम्यक दर्शन। और पर पदार्थों में अपनापन, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। तो हमें काम क्या करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या काम करना है? व्रत पालने हैं, सील पालना है, समय शिखर की यात्रा करना है, दान देना है। ये तो सब बातें ठीक हैं, करो तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये निर्णय करना है कि वास्तव में मैं कौन हूं। श्रीमद् लिखते हैं, हूं कौन, छू आया कहां से, और मेरा रूप क्या। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या, इसका विवेक विचार निस्दिन शांत भावे कीजिए। इस बात का विवेक, इस बात का विचार हमें प्रत्येक दिन शांत भाव से करना चाहिए। ये भगवान बनने का उपाय है। इस सारी दुनिया को हमें दो भागों में बांटना है, एक भाग भाग में राम और एक भाग में गांव। एक भाग में अपना आत्मा राम और दूसरे भाग में सारी दुनिया। और इन दो भागों में से जो एक तरफ हमने आत्मा राम रखा है, उसको वो हमें उस दूसरे भाग से सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिखाई देना चाहिए, लगना चाहिए अंदर से, और उसमें हमारा अपनापन आना चाहिए, तो ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमें होगी, अन्यथा नहीं। सम्यक दर्शन कोई बाहर की क्रियाकांड से प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। वस्तु का जो सही स्वरूप है वो समझना ही सम्यक ज्ञान है, और उसका उसमें भेद विज्ञान करके मैं कौन हूं इसका सच्चा निर्णय करना, ये सम्यक दर्शन है। इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान किसी क्रियाकांड से मिलने वाली चीज नहीं है। इसीलिए समय सार में कहा है, क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, और ज्ञान कांड से सहज ही प्रगट आत्मा राम। तो ये अपना भगवान आत्मा जो स्वयं स्वभाव से भगवान है, लेकिन आज तक हमने इस बात को नहीं जान पाया, इसलिए हम इतना दुख उठा रहे हैं। तब ये प्रश्न आता है कि इस भगवान आत्मा को बनने के लिए करना क्या। मैं आपसे पूछता हूं कि वो जो रिक्शे वाला बालक है, उसे करोड़पति बनने के लिए करना क्या, कौन सा धंधा शुरू करना, कौन सी कमाई करना, नौकरी करना, धंधा खोलना। अरे भाई साहब, उसे करोड़पति बनना नहीं है, वो तो बना बनाया करोड़पति है, उसके तो करोड़ों रुपया बैंक में जमा है, तो उसे करोड़पति बनने के लिए क्या करना है, सिर्फ जानना है कि मैं करोड़पति हूं। बोलो कितना सरल काम है, मानना है कि मैं करोड़पति हूं। इसको जरा हम एक सरल उदाहरण से समझें तो बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी। एक लड़के को डॉक्टर बनना हो तो कितने वर्ष पढ़ना पड़ता है और कितने पैसे खर्च करना पड़ते हैं। ये बोल रहे हैं कि 5 वर्ष पढ़ना पड़ता है और 5 लाख खर्च करना पड़ते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है। 5 वर्ष में तो भाई साहब वो 5वीं क्लास पास होगा, डॉक्टर कैसे बन जाएगा। अरे डॉक्टरी में प्रवेश पाने के लिए पहले 12 साल पढ़ना पड़ेगा, तो डॉक्टर बनने के लिए 12 साल तो दे, और 5 साल में मान लो आपकी डॉक्टरी के तो 17 साल हुए कि नहीं हुए, आप 5 साल बता रहे, और कह रहे 5 लाख रुपया खर्च होंगे। अब इन्हें पता नहीं है 5 लाख तो भर्ती होने के पहले डोनेशन में देने पड़ते हैं, वो डोनेशन के नाम पर आजकल चंदा लगता है ना, क्यों। तो एक लड़के को डॉक्टर बनना हो तो 17 साल लगते हैं और लाखों रुपया खर्च होते हैं, ठीक है। लेकिन एक लड़की को डॉक्टर नहीं बनना हो, लेडी डॉक्टर नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्या करना हो, एक लड़की को लेडी डॉक्टर बनना हो तो कितने पैसे खर्च होंगे और कितने साल लगेंगे, बोलो। अरे एक माला ली और किसी डॉक्टर लड़के के गले में डाल दी और लड़की डॉक्टर नहीं बन जाती है कि नहीं बन जाती है, बोलो। उसे क्या करना है, उसे पढ़ना थोड़ी है डॉक्टर नहीं बनने के लिए, लेडी डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ख्याल में है ना। डॉक्टर लड़के के गले में बरमाला डाली डॉक्टर नहीं, वकील के गले में बरमाला डाली वकील, सेठ के लड़के के गले में बड़ा नाम डाली सेठानी, पंडित के लड़के में गले में बरमाला डाली पंडितानी, क्यों? अमेरिका की फर्स्ट लेडी बनना हो तो क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, जो राष्ट्रपति हो उसे गले में बरमाला डालो, फर्स्ट लेडी, क्या करना पड़ता है बोलो। राष्ट्रपति बनने के लिए तो कुछ करना पड़ता होगा, और राष्ट्रपति की पत्नी बनने के लिए, राष्ट्रपत्नी बनने के लिए क्या करना पड़ता है। अरे जिसका पति राष्ट्रपति है वो तो उसकी पत्नी है ही, जिसका पति डॉक्टर है उसकी पत्नी डॉक्टरनी तो है ही, ऐसे भगवान आत्मा स्वभाव से तो भगवान है ही, इसे बनने के लिए करना क्या है। इसलिए इसे तो सिर्फ ये जानना है कि मैं स्वयं भगवान हूं, ऐसा अंदर से मानना है कि मैं स्वयं भगवान हूं। एक दफे अंदर से ऐसा जानना और मानना हुआ तो उसके जीवन में वो गौरव अपने आप आने लगता है। जिसका पति राष्ट्रपति बन जाता है उस पत्नी को राष्ट्रपत्नी बनने के व्यवहार को सीखने में ज्यादा देर नहीं लगती है। जो घर पर रोजाना रोटी बना के खिलाती थी अपने पति को, तो 10 नौकर नौकरानियां उसकी रोटी बनाने लगती हैं और वो बराबर मालकिन के ढंग से काम करने लगती है, कोई ट्रेनिंग लेने कहीं नहीं जाना पड़ता है। अंदर में ये भाव आना चाहिए क्या, उस पद का गौरव उसे अंदर से आना चाहिए, ऐसे ही मैं स्वयं भगवान आत्मा हूं, इसका गौरव उसे अपने अंदर से आना चाहिए। यदि वो गौरव उसके अंदर से आ जाएगा तो उसे बनने में कोई देर नहीं है। इसलिए कहते भाई तेरा आत्मा तो स्वयं भगवान बना बनाया है, सिर्फ उसे जानना है और अंदर से ऐसा मानना है कि मैं स्वयं भगवान हूं, फिर उसका ध्यान नहीं करना पड़ेगा कि ध्यान क्या करना पड़ेगा, फिर तो ध्यान होगा, क्योंकि जिसमें हमारा अपनापन आ जाता है उसका ध्यान बार बार आए बिना रहता नहीं, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं आत्मा से परमात्मा बनने की जो प्रक्रिया है वो विधि है, वो यत्न साध्य नहीं है, सहज साध्य है और सहज ऑटोमेटिक प्रक्रिया में संपन्न होने वाली बात है। और जिन्होंने एक दफे अंदर से विश्वास कर लिया कि मैं स्वयं आत्मा भगवान हूं, ऐसी प्रतीति आ गई, वो एक ना एक दिन पर्याय में भी परमात्मा अवश्य बनेंगे। इसलिए हमारी ये ड्यूटी है कि हम अंदर से इस बात का निर्णय करें कि मैं कौन हूं और इस निर्णय पर पहुंचें कि मैं स्वयं भगवान हूं, उसकी प्रतीति लाएं, उसका ध्यान धरें, तो निश्चित रूप से हम पर्याय में परमात्मा बन जाएंगे। सभी आत्मा इस मार्ग पर चलकर पर्याय में परमात्मा बनकर अनंत सुखी हों, इस मंगल भावना के साथ अभी की बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।
जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो सोवाणी मस्तके नमो सदा देव।